चलते हुए तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो कुछ संत और भक्त वहां रुकते हैं। तो जैसे ही वहां जिस जमीन पर बैठे उनको कीर्तन की आवाज आने लगी, कीर्तन कर रहा है कोई, जय सियाराम जय सियाराम, और करताल बज रहे हैं। उन्होंने जमीन पर कान लगाया तो देखा करतालों की आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। इन्हीं भक्तों में एक भक्त थे जिनका नाम था कूबा जी। क्या नाम था? राजस्थान के थे। उनके गुरुदेव थे श्री कृष्ण दास पैहारी जी, बहुत बड़े संत। उनकी आज भी जयपुर को, जयपुर में उसे गलता गदी कहते हैं, जयपुर का राजघराना उनका शिष्य था। और ऐसे नहीं असंख्य, ऐसा कहा जाता है कि पैहारी जी महाराज का दर्शन स्वामी विवेकानंद जी ने भी उत्तराखंड के मध्य में किया था, उनकी भेंट हुई थी। तो ये पैहारी जी महाराज ऐसे दिव्य महापुरुष थे, उनके शिष्य थे। उनके गुरुदेव ने जाति के कुम्हार थे कूबा जी महाराज, उनके गुरुदेव ने एक ही बात कही, अपने जीवन में कुछ नहीं होता ना, संत सेवा ही कर। संत सेवा करते थे, इनके यहाँ कोई भी आता जाता था संत इनके यहाँ रुकते थे, वैष्णव इनके यहाँ रुकते थे। और जीवन में महान कष्ट था महाराज, गरीबी थी, लेकिन इनका नियम था, ये कुम्हार का काम करते थे, पति पत्नी थे, बाल बच्चे थे नहीं, तो उतना ही बर्तन बनाते थे जिससे घर की गृहस्थी चल सके, उससे ज्यादा बर्तन नहीं बनाते थे। उनको लगता था कि ज्यादा बर्तन बना लिए तो ज्यादा व्यापार करेंगे, ज्यादा व्यापार करेंगे तो भगवान का भजन छूटेगा, तो उतने ही 30 दिन के 30 बर्तन उतने ही बनाते थे, उतने ही बेचते थे। एक दिन एक साथ 50 साधुओं का मंडल आ गया और गाँव वाले तो महाराज संत उनके यहाँ रुकते थे, गाँव वालों से पूछा तो गाँव वाले ने कहा कूबा जी महाराज है उनके पास जाओ। तो साधु संत गए, अब वो खेतों में जा रहे थे मिट्टी लेने के लिए और जैसे ही रास्ते में देखते हैं 20 साधुओं को तो वो देख के प्रसन्न हो जाते हैं। अब घर में खुद के दाना नहीं है लेकिन 20 साधु सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा आप ही केवल राम जी महाराज है? बोले हाँ। कि बहुत 2 दिन हो गए साधुओं ने कुछ खाया नहीं है, आप व्यवस्था करें। उन्होंने मना भी नहीं किया, अपनी स्थिति के बारे में भी नहीं कहा, कहा आइए महाराज सिर्फ 1 घंटा दीजिए मुझे, अभी मैं जाता हूँ व्यवस्था करता हूँ, तब तक आप अपना ये सब विराजमान जगह नियुक्त करिए, कहाँ ठहरना है आपको। खेतों में संत ठहर जाते हैं और कूबा जी जाते हैं महाजन जी के पास जो गांव के सेठ थे, उनसे कहते हैं हमारे यहाँ 50 साधु उनके लिए भोजन चाहिए। महाजन जी ने कहा कि हम करेंगे लेकिन हम तभी आपको सामान दे सकते हैं जब आप ये हमें बोलें कि आप हमारे यहाँ कुआं खोदेंगे, क्योंकि भक्त थे उनके हाथ से जो भी वो कुआं खोदते थे मीठा पानी निकलता था। महाजन ने कहा हमारे यहाँ पानी नहीं निकल रहा, बस तुम्हारा हाथ लग जाए अगर तुम कुआं खोद के दो तो हम 50 साधुओं का भोजन के लिए सामग्री दे देंगे। उन्होंने कहा कूबा जी ने कि ठीक है हम करेंगे कुआं खोदेंगे। 50 साधुओं की सामग्री लाकर साधुओं को भोजन कराया, अगले दिन पति पत्नी महाजन जी का कुआं खोदने गए। अब उनकी बड़ी है भाव ऐसा था कि काम करते समय भगवान का नाम जाप करते थे, सीताराम सीताराम। पत्नी भी मिट्टी उठाते समय सीताराम, वो मिट्टी खोदते समय सीताराम, और कुआं खोदते खोदते 10-15 दिन हो गया, बहुत गहरा। अब धीरे धीरे पानी भी आने लगा और मीठा पानी। महाजन जी खुश हो गए, अगले दिन और मिट्टी खोदी। अब वो जगह ऐसी थी ढीली मिट्टी की कि कूबा जी महाराज तो नीचे थे उनकी पत्नी ऊपर थी, अचानक मिट्टी ढीली हो गई पानी के वेग से और सारा का सारा मिट्टी का जो बड़ा सा ऊपर था वो एक साथ नीचे गिरा और कूबा जी महाराज उसमें दब गए। पत्नी बहुत तेज चिल्लाने लगी, आसपास के लोगों को बोलने लगी भाई कोई है मेरे पति को बचाओ, मेरे पति अंदर हैं। गांव वाले दौड़े, महाजन को भी पता चला, वो भी दौड़ा, लेकिन मिट्टी इतनी ज्यादा थी कि 15 दिन का जो कुआं खोदा था इतना समय लगा था वो सारी मिट्टी खिसक गई थी। अब लोगों ने कहा कि अब अगर हम निकालेंगे तो भी कम से कम 10 दिन लगेंगे, तो उसमें तो बचने वाले नहीं है, और गरीब को वैसे भी कौन बचाने का प्रयास करता महाराज, बचाए तो उसे जाता है जिसके पीछे कुछ हो। किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया, उनकी पत्नी को समझा दिया देखो अगर हम 10 दिन भी खोदेंगे तो भी वो बचने वाले नहीं है, तो अपने हृदय पे हाथ रखे। गाँव वालों ने उनकी सामग्री के लिए कुछ सामान जुटाया, वो पत्नी भगवान की भक्त थी, यही मेरे प्रारब्ध में ऐसा संतोष करके अपने आप को संभाल लिया। और दिन व्यतीत होते चले गए, लोग भूल भी गए कि कोई कुएं में दब करके मर गया है। लेकिन 1 साल बाद उसी जगह पर संत मंडली निवास करती है, एक रात का पड़ाव लेती है। घूमते हुए तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो कुछ संत और भक्त वहाँ रुकते हैं, तो जैसे ही वहाँ जिस जमीन पर बैठे उनको कीर्तन की आवाज आने लगी, कीर्तन कर रहा है कोई, जय सियाराम और करताल बज रहे हैं। उन्होंने जमीन पर कान लगाया तो देखा करतालों की आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। गांव वालों को बुलाया भैया यहाँ नीचे कोई कीर्तन की आवाज आ रही है। गांव वालों ने कान लगाया, उन्होंने कहा यहाँ तो कूबा जी महाराज ने कुआं खोदा था, वही गिर पड़े थे, उनके ऊपर मिट्टी आ गई। लोगों को विश्वास नहीं हो सकता वो एक वर्ष तक कैसे जीवित रह सकते हैं अंदर। अब ये खबर पड़ी चारों ओर तो लोग आने लगे, प्रसाद चढ़ाने लगे। राजा को कानों में पता चली, वो स्वयं आते हैं कि मैं देखूंगा। उन्होंने कान लगाया तो देखा सच में सीताराम सीताराम की आवाज आ रही है और करताल और मृदंग इत्यादि बाजे बज रहे हैं। राजा ने कहा आदेश दिया कुएं को खोदा जाए, ये दोबारा से मिट्टी उठाई गई और आराम से कुएं की मिट्टी उठाई गई। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन भीड़ की भीड़ लगी रहती, कौन निकलेगा इसके अंदर से। और गहरी आवाज होती जाती और खुल जाती, जैसे मिट्टी हटती जाती और आवाज स्पष्ट होती जाती भगवान के कीर्तन की। अब धीरे धीरे जैसे ही 8 दिन के अंतराल में कुएं का जैसे ही छोर आया जहाँ पर कुंवर जी महाराज दिखते, मिट्टी हटाई, राजा भी देखने को तत्पर है क्या है अंदर, देखे तो सही। तो क्या देखा, अंदर प्रकाश था। कुंवर जी बैठे हैं, उनके पास भोजन की थाली है, जल का लोटा है और स्वयं चौकी पर भगवान बैठे हैं। कौन बैठे हैं? साक्षात नारायण विराजमान है उनके समक्ष। केवल 10 लोगों ने ही दर्शन किया राजा सहित, और जैसे ही लोगों ने दर्शन किया उस प्रकाश को देख करके सबकी आंखें चौंधी आ गई। उन्होंने ये क्या देखा, और थोड़ी देर में वो अदृश्य हो गया, केवल कुंवर जी महाराज रह गए। ताल मृदंग भी भगवान के साथ अदृश्य हो गए और यहाँ कुंवर जी महाराज सीताराम 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 करते हुए बैठे हुए मिले। उनका नाम केवल राम जी था, लेकिन एक पीठ पर हल्का सा दबाव के कारण झुक गई, उसके कारण उनको कुंवर नाम पड़ा, कुंवर जी महाराज। पर 1 साल तक वो दबे रहे। जब वो निकले तो उनके तेज का, तन के तेज का प्रकाश दिव्य था, लोग उनके चरणों में पड़ गए। जिसने अपने जीवन में कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कभी कोई वेद मंत्र इत्यादि नहीं उठाया, लेकिन संतों की सेवा करने का परिणाम ये था कि आज उनके वाणी से वेद निकलने लगे, लोगों को ज्ञान मार्ग देने लगे, लोग आते चरणों में झुक जाते और वो एक शब्द बोलते उनका जीवन बदल जाता। ऐसे कुंवर जी महाराज, ये किसने किया? उन्होंने भी बहुत बड़े कर्म किए नहीं, अपना काम भी कर रहे थे, लेकिन एक निष्ठा बना के रखी, संतों की सेवा करूंगा। आप भी अपने जीवन में एक निष्ठा बना के रखिए, तमाम चीजें मत पकड़िए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक ही चीज को पकड़ के रखिए। चाहे संत सेवा पकड़ लीजिए, नाम जप पकड़ लीजिए, कोई व्रत उपवास पकड़ लीजिए, ठाकुर जी की सेवा पकड़ लीजिए, लेकिन करिए भरोसे के साथ। भगवान की कृपा आप पर है, इसका क्या परिणाम है भाई, इसका हम कैसे माने भगवान की कृपा हमारे ऊपर है? तो ये 5 चीजें आपके जीवन में होंगी, संतों का सत्संग मिलेगा, उनका दर्शन मिलेगा और भगवान की सेवा होगी किसी न किसी माध्यम से। चाहे संतों की सेवा करो, किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो व्यक्ति संपन्न नहीं है लेकिन उसे किसी चीज की आवश्यकता, उसकी सेवा। चाहे ठाकुर जी के अपने स्वरूप में भगवान विराज रहे घर में, उनकी सेवा। तो पहला सत्संग, दूसरा सेवा, तीसरा साल में 1-2 बार ठाकुर जी के किसी मंदिर तीर्थों में जाओ। वृंदावन चले गए, अयोध्या चले गए, काशी चले गए, ये होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो मतलब सब ठाकुर जी की नजर आप पर है। और चौथा है, जीवन में कोई व्रत उपवास होना चाहिए, चाहे एकादशी व्रत करो। और पांचवा और अंतिम है महाराज, और ये बहुत आवश्यक है, गुरु जनों की आज्ञा क्या आप मान पा रहे हैं? कई लोग गुरु के चरणों में अपना माथा रगड़ते रहते हैं, उनकी रज उठा के माथे पे मस्तक पे लगा लेते हैं, लेकिन गुरु वचनों का हम पालन करते हैं क्या? हम हमारे गुरु के कहे हुए वचन पर आज्ञाकारी उतर रहे हैं, उनको आचरण कर रहे हैं? अगर ये चीजें हो रही हैं तो समझो प्रभु की सीधी दृष्टि आप पर है।